पेश हैं आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स में 1533 और विक्टोरिया में 190 नए कोविड मामले दर्ज। भारत में दर्ज हुए 40,000 से अधिक दैनिक कोरोना मामले। और खेल में रोमानिया की सिमोना एलिप और स्पेन की गार्बिन मुगुरुज़ा पहुंची यूएस ओपन के चौथे चरण में। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स ने आज स्थानीय रूप से अधिग्रहित 1533 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में 4 लोगों की कोरोना से मृत्यु भी हुई है। बीते दिन राज्य में 1,31,000 कोरोना टेस्ट किए गए थे। न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हजार्ड ने ब्यौरा देते हुए बताया है कि आज राज्य में दर्ज हुई मृत्यु में एक 50 के दशक में और एक 60 के दशक में व्यक्ति जो कि पश्चिमी सिडनी के निवासी थे और 80 के दशक में एक महिला और 70 के दशक में एक पुरुष जो कि दक्षिण पश्चिमी सिडनी के निवासी थे शामिल हैं। इनमें से किसी को भी कोरोना का टीका नहीं लगा था। राज्य में 16 साल से अधिक की उम्र के व्यक्तियों में कुल 72% को टीके की पहली खुराक प्राप्त हो चुकी है और 39% को पूर्ण टीका प्राप्त हो चुका है। राज्य में सामने आ रहे मामले अब भी दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी सिडनी से ज्यादा कर हैं। श्री हजार्ड ने टीकाकरण पर जोर देते हुए कहा है,
there are currently 1,041 COVID-19 cases that are being managed in our hospitals, and there are 173 people in intensive care, and 62 of those people in intensive care are requiring ventilation. I want to stress the importance of vaccination yet again. When we look at the number of people in our intensive care units, of the 173 people in ICU, or intensive care units, 137
उधर विक्टोरिया ने भी 190 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए हैं। विक्टोरिया स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सामने आए मामलों में से 103 मामले मौजूदा प्रकोप से जुड़े पाए गए हैं और 87 अब भी जांच के दायरे में हैं। राज्य में एक्सपोजर साइट्स की संख्या 1,000 के पार जा चुकी है। बीते दिन राज्य में 39,500 टेस्ट के नतीजे प्राप्त हुए थे और 35,464 टीके की खुराकें वितरित की गई थीं। राज्य के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज पहले ही कह चुके हैं कि वे लोग जो टीका नहीं लगवाएंगे उन्हें राज्य में तालाबंदी खुलने के बाद सामान्य जीवन जैसे रेस्टोरेंट या पब जाना या कि खेल मैचों में शिरकत करने की आज़ादी नहीं मिलेगी। राज्य में 23 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि 23 सितंबर तक 70% योग विक्टोरियाई लोगों को टीके की पहली खुराक प्राप्त हो जाएगी। इसी बीच दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड में एक 4 साल की बच्ची को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। यह बच्ची न्यू साउथ वेल्स से आए संक्रमित ड्राइवर की निकट संपर्क पाई गई है। यह संक्रमण लोगन के स्थानीय सरकारी क्षेत्र में पाए गए हैं। इस बच्ची ने हफ्ते की शुरुआत में माउंट वॉरन पार्क स्थित द बुलेवार्ड अर्ली लर्निंग चाइल्ड केयर सेंटर में शिरकत की थी और अब इस चाइल्ड केयर के सभी बच्चों, स्टाफ और आगंतुकों को टेस्टिंग कराकर 14 दिन के एकांतवास में जाने को कहा गया है। इसी बीच एक्सट्रीम और हाई रिस्क राज्यों से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अगले हफ्ते से आने वाले ट्रक ड्राइवरों को अब राज्य में प्रवेश के 3 दिनों के अंदर अंदर कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। प्रीमियर मार्क मैकगवन ने देर शुक्रवार यह घोषणा करते हुए कहा कि कोविड प्रभावित न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया से आने वाले ट्रक ड्राइवरों के साथ आने वाला खतरा बहुत बड़ा है। स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया है कि विक्टोरिया में कोविड-19 के चलते एशियाई मूल के निवासियों को नस्ल भेद का सामना करना पड़ रहा है। इस शोध में पाया गया है कि ऑनलाइन, ग्रामीण और क्षेत्रीय इलाकों में पूर्वी एशियाई मूल के लोगों के साथ अधिक नस्ल भेद हो रहा है। शोध में हिस्सा लेने वाले लोगों का कहना था कि वे अपने सामान्य जीवन में अब अधिक सावधान होकर चलते हैं। उन्हें नस्ल भेद होने का खतरा बना ही रहता है और इसी के कारण वे हर वक्त चिंता से ग्रस्त रहते हैं। पुलिस ने सिडनी में हीरोइन मामले में एक आदमी को गिरफ्तार किया है। पिछले दिसंबर में पुलिस ने 347 किलो हीरोइन पकड़ी थी जिसकी कुल कीमत $156 मिलियन थी। ये ऑस्ट्रेलिया में पिछले 20 साल में पकड़ा जाने वाला सबसे बड़ा हीरोइन का जखीरा था। पुलिस का कहना है कि इतनी हीरोइन से सड़कों पर 11 लाख से भी ज्यादा सौदे किए जा सकते हैं। पुलिस ने यह गिरफ्तारी माउंट कोला में 29 वर्षीय इस आदमी के घर से ही की। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। न्यूजीलैंड में हुए घरेलू आतंकवादी हमले में 6 लोग चुटहिल हो गए हैं। यह हमला ऑकलैंड के एक सुपरमार्केट में हुआ था। हमला करने वाला आदमी पहले से ही संदिग्ध था और पुलिस की बराबर निगरानी में था। इसने अचानक ही ऑकलैंड के सुपरमार्केट में लोगों को चाकू से मारना शुरू कर दिया, जिसके एक मिनट के अंदर ही पुलिस ने इसे मार गिराया। श्रीलंकाई मूल का यह व्यक्ति न्यूजीलैंड में पिछले 10 साल से रह रहा था और इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट समूह से प्रेरित था। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने इस व्यक्ति को जघन्य हिंसक बताया है, जिसके कृत सर्वथा घृणित थे।
It was hateful, it was wrong. It was carried out by an individual, not a faith, not a culture, not an ethnicity, but an individual person who was gripped by ideology that is not supported here. By anyone or any community. He alone carries the responsibility for these acts. Let that be where the judgment falls.
अफगानिस्तान में बताया जा रहा है कि तालिबान ने पंजशीर वैली पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। ये तालिबान के अख्तियार के बाहर की आखिरी जगह थी। शुक्रवार की शाम को ये खबर उड़ने के बाद कि स्थानीय नेता अहमद मसूद के वफादार लड़ाकों और तालिबान के बीच की लड़ाई तालिबान ने जीत ली है, काबुल में अचानक जश्न की गोलियां चलाई जाने लगी। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के प्रवक्ता बाबर बलोच का कहना है कि कम से कम 6 लाख लोग, जिनमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं हैं, अफगानिस्तान के अंदर विस्थापित हो चुके हैं।
अफगानिस्तान has an internally displacement crisis that we have been trying to talk about. What we are emphasizing is that cannot be allowed to become a humanitarian catastrophe, and that's why we have been trying to appeal to the world that don't turn away or your attention or focus at this stage from Afghans and Afghanistan.
उधर अमेरिका का कहना है कि वे उन अमेरिकी नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और वहां से लौटना चाहते हैं। अमेरिका के राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन कतर जाकर वहां के नेताओं से मिल अमेरिका के बचाव कार्यों में उनके सहयोग का धन्यवाद अदा करेंगे। उनका कहना है कि अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहता है, ताकि उन पर दबाव बना सके कि वे अफगानिस्तान के लोगों को वैसे जीने दें जैसे वो चाहते हैं।
Most of the remaining American citizens are dual nationals whose home is Afghanistan and whose extended families live there. So it's no surprise that deciding whether or not to leave the place they call home is a wrenching decision.
अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चक्रवर्ती तूफान आयरा की तबाही झेल रहे लुइजियाना प्रदेश का निरीक्षण करने पहुंचे। इस तूफान के प्रभाव से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और हजारों बिना बिजली और पानी के रह गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी।
And we're in this together, and so we're not going to leave any community behind, rural, city, coastal, inland, and I promise we're going to have your backs till this gets done.
और अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 42,618 नए मामले सामने आए हैं। यह लगातार चौथा दिन है जब 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हों। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,29,45,907 हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में 330 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ पिछले 24 घंटों में कुल 36,385 मरीज कोविड से स्वस्थ भी हुए हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट पिछले 71 दिन से 3% के नीचे बना हुआ है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। एक मामले में सीबीआई द्वारा 542 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद अपील दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केंद्रीय एजेंसी के कामकाज और उसके परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने का फैसला किया। शीर्ष अदालत ने एजेंसी द्वारा मुकदमा चलाने वाले मामलों में सजा की कम दर को देखते हुए ये कदम उठाया है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी शनिवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.44 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 45 सेंट कीमत रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। रोमानिया की सिमोना हैलिप और स्पेन की गार्बिन मुगुरुज़ा यूएस ओपन के चौथे चरण में साथ प्रवेश कर गई हैं। दोनों ने ही न्यूयॉर्क में 3 सेट से जीत दर्ज की। हैलिप ने कजाकिस्तान की एलिना रिबकीना को हराया, वहीं गार्बिन मुगुरुज़ा ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को शिकस्त दी। दोनों हैलिप और रिबकीना 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं, पर दोनों ने ही कभी यूएस ओपन नहीं जीता है। और अंत में एक नजर कल यानी रविवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी, यहां अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल हल्की बौछार पड़ सकती है, यहां अधिकतम तापमान 16 डिग्री जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल छिटपुट बारिश के आसार हैं, अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल तेज बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, यहां अधिकतम तापमान 13 जबकि न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल दिन के साथ बारिश कम होने के आसार हैं, यहां अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल छिटपुट बारिश के आसार हैं, यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में कल हल्की बौछार पड़ सकती है, अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बिजली के साथ बारिश की संभावना है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।